والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
کیونکہ مجھے اندازہ ہے, گرمی کا بھی اندازہ ہے, اب کافی دیر سے یہ سیشن چل رہا ہے اور انشاءاللہ بس دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ایک سوال آپ کے ذہن میں دیں گے اگلے سیمینار کے لیے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک بہت ہی عظیم صحابی زرارہ سے کہا کہ زائر امام حسین کو تمام عالم کے انسانوں پر ایک فضیلت حاصل ہے. تو زرارہ نے پوچھا کہ مولا وہ کیا فضیلت ہے؟ پورے عالم کے انسانوں پر امام حسین کے زائرین کو جو ہے وہ فضیلت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو زائر امام حسین ہوگا وہ قیامت والے دن 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا جب باقی امت کا جو ہے وہ حساب کتاب چل رہا ہوگا. اور ظاہر اب اس میں تفصیلات ہیں کہ قیامت کے دن کا ایک ایک لمحہ وہ کتنا سخت ہے اور کیا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, اور ہر شخص چاہ رہا ہوگا کہ اس حالت سے اپنے آپ کو جلد از جلد خلاصی دے اور جلد از جلد, یعنی اس کا شاید وہاں کا ایک لمحہ یہاں کے شاید ہزاروں لاکھوں لمحوں سے بھی شاید اس کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے فضیلت زائر امام حسین. ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص نے تمام عمر حج انجام دیے ہیں لیکن امام حسین کی زیارت, یعنی ہر سال حج, یعنی تمام عمر کا مطلب ہے ہر سال حج انجام دیا ہو لیکن اگر اس نے امام حسین کی زیارت انجام نہیں دی تو حدیث فرماتی ہے کہ اس نے اس کے اللہ کا اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کیا. یہ روایت ایسی ہزاروں روایتیں ہیں, شاید میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا. کبھی آپ لوگ انٹرنیٹ پہ نکالیں, آپ کو اردو میں بھی کافی مقالے آپ کو مل جاتے ہیں آثار و برکات زیارت امام حسین. تو اس میں کوئی میرے پاس 8-10 موارد تھے لیکن کیونکہ وقت کم ہے انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو یہ ہے زائر امام حسین. سوال یہ ہے کہ یہ جو روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ زائر امام حسین کے تمام گناہ بخشائے جائیں گے, حج و عمرے سے زیادہ ثواب, اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو ہر مہینے قافلے جا رہے ہیں, ہر مہینے الحمدللہ زیارتوں کا جو ہے نا شوق اور رغبت بڑھتی جا رہی ہے, الحمدللہ ہر سال 40 کا جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ہم تو نہیں دیکھ رہے کوئی تبدیلی آ رہی ہو. اگر زوار کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کے اثرات کہاں ہیں, وہ آثار کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں جس طریقے سے زمان اور مکان, خداوند متعال نے بہت ساری چیزوں کے وقت زمانے اور مکان ایسے ہیں جس کے منفی اثرات ہوتے ہیں, بہت سارے زمان اور مکان کے مثبت اثرات ہوتے ہیں انسان کی روح. انہی مکان میں سے بہترین مکان جو ہے وہ کربلا کی مکان. اور زمان میں جیسے ماہ مبارک رمضان ابھی گزرا ہے, یہ ماہ مبارک رمضان جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس ماہ میں اپنے گناہ نہ بخشوائے تو وہ اگلے سال تک اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتا. صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ حج میں عرفات کے میدان میں ہے. तो ये माह मुबारक के बाद हम अपने आप को ज़रा टटोलें, जायज़ा लें कि ठीक है, माह मुबारक रमज़ान में हम कुरान की भी तिलावत करते हैं, हमें नमाज शब की भी तौफीक हो जाती है, मुस्तहबात भी, नवाफिल भी, लेकिन वो इंसान जो माह मुबारक से पहले था और वो इंसान जो माह मुबारक के बाद है, कितना फ़र्क है। थोड़े दिन तक वो नूरानियत रहती है और फिर हम वैसे ही रजब वाले, शाबान वाले इंसान बन जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या करें कि हम इस नूर को देखें। दोनों चीज़ें तकरीबन सिमिलर हैं। रमज़ान में भी इंसान को एक उसकी रूह को एक नूरानियत महसूस मिलती है, इस नूर को महफूज रखना होता है, वरना ये आहिस्ते आहिस्ते मध्यम हो जाता है। इसी तरीके से ज़ाहिर हर ज़ाहिर इमाम हुसैन पर असरात उस ज़ियारत के लाजमी तौर पर होंगे, लेकिन जब वो यहाँ आता है कुछ दिन तक अपने में तब्दीली महसूस करता है, मैं कोई और इंसान हूँ उसको महसूस होता है, लेकिन ये आहिस्ता 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 फिर हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी में आ जाते हैं। और तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस नूरानियत को बरकरार रखती है, जो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े और उसकी इबादतों को बरकरार रखे। माह मुबारक रमज़ान इसलिए नहीं है कि बस हम उस माह में ही नूरानियत और मानवियत हासिल करें और फिर अगले साल, नहीं, ये एक वर्कशॉप है। माह मुबारक रमज़ान एक ट्रेनिंग वर्कशॉप था कि आपको पूरे साल ऐसा रहना है, पूरे साल आपको इस तरीके से कुरान के साथ मानूस रहना है, पूरे साल आपको जो है दुआओं के साथ, शब नमाज शब के साथ रहना है। इसी तरह ज़ियारत इमाम हुसैन है। ज़ियारत इमाम हुसैन ज़ाहिर वो है कि जो वाकयान अगर हकीकी माना में खुदा करे कि हमें वो ज़ियारत नसीब हो कि जब हम अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन कहें तो वहाँ से जवाब आए, काश हम अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकें। तो ये सिर्फ उस मकान के, सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, नहीं, हमने वो परमानेंट नूर हासिल करना है जो हमारे अंदर महफूज रह सके। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको सोचना है। मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आज सिर्फ आपके जहनों में ये सवाल डालना चाहता था कि जब हमारे माशरे में ज़्यारतें माशाल्लाह से इतनी बढ़ रही हैं, लेकिन हम अपने माशरे में कोई तब्दीली देख रहे हैं नहीं, वही जैसे ज़्यारत से पहले थे। ज़्यारत के थोड़े दिनों तक हम कुछ तब्दीली रहते हैं, तब्दील रहते हैं, उसके बाद फिर वही के। तो इसकी तरफ भी हमारे आइम्मा अथहार ने, हमारी मकतब ने हमें राह बताई है कि ये जो वर्कशॉप्स आपके लिए रखे गए हैं, जिसमें आपको जैसे एक हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना, कोई एक मरीज़ होता है, उसको कहते हैं भाई आपका मर्ज़ इतना बढ़ गया, अब आपको है ना हमें हॉस्पिटलाइज करना होगा, एक एक ख़ास एनवायरनमेंट में आपको रखा जाएगा जिसमें आपके सारे ब्लड चेकअप्स होंगे, आपकी सारी अमराज को देखा जाएगा, ठीक है, चारों तरफ हॉस्पिटल में सफ़ेद लिबास में नर्सें होती हैं, वहाँ पे फरिश्ते होंगे, ठीक है, तो वो नूर के लोग होते हैं, नूरानियत होती है, और आपको एक सेहतमंद इंसान हॉस्पिटल में जिस्मी लिहाज से होता है, ये महीने और ये ज़्यारतें जो हैं हमें मानवी लिहाज से सेहतमंद करती हैं, शिफा देती हैं, ठीक। अब इस शिफा को बरकरार रखना होता है, वरना फिर वही के वही है। वो कैसे बरकरार रखें, आज सिर्फ मैं दो चीज़ों की तरफ जो है वो निशानदेही करूँगा। नंबर एक, गुनाह से दूरी। हमारे जहनों में एक बैक ऑफ माइंड पर यह है कि बस हम इमाम के मानने वाले भी हैं लेकिन हम गुनाह भी साथ साथ चलेगा, ये साथ नहीं चल सकते, गुनाह और इमाम की माइयत, इमाम के नासिरान, ये साथ साथ नहीं चल सकते, ये फासला आ जाता है। हाँ, हम उनके चाहने वाले रहेंगे, उनकी नज़र करम हम पर रहेगी, लेकिन हम उनके कारवान में शामिल नहीं हो सकते, हम उनकी नुसरत के काबिल नहीं हो सकते। तो पहला नुक्ता है गुनाहों से दूरी। ज़ियारत में भी ये बताया जाता है, जैसे हालत में ज़ायर एंटर होगा हरम में, उसी प्रोपोर्शन से वो बाहर आएगा। हम जितना अपने आप को पाक व पाकीज़ा, जितनी इमाम की मारफत के साथ अपनी रूह की पाकीज़गी के साथ करबला में वारिद होंगे, उतना ही वहाँ पे फैज़ हासिल कर सकेंगे। फैज़ तो वहाँ तो जारी और सारी है, लेकिन हमारी ज़रफ़ियत कम होगी। तो ऐ काश ये जो सेमिनार्स रखे गए हैं, ये इसलिए रखे गए हैं कि ये वक्त है हमारे पास, चंद महीने रह गए हैं हमें, काश के हमें उस सरज़मीन पर जो है वो इमाम के इंज़ा हो जाए और हम जा सकें। तो जितनी हम अपने आप को अभी से गुनाहों से दूर रखेंगे, तो हमारी रूह उस दर्जे पर होगी कि हम कमा हक्कहू वो चीज़ें हासिल कर सकेंगे, वरना आलूदा जाएंगे खुद, ठीक है वहाँ की नूरानियत होगी, लेकिन ऐसे ही है जैसे दूसरी क्लास का बच्चा जो है वो दसवीं क्लास में चला जाए, ठीक है वो जाएगा, प्रोफेसर की बात भी सुन रहा होगा, क्लास भी अटेंड कर रहा होगा, लेकिन वो कुछ वो हासिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दसवीं क्लास तक, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाया। उसको बिठाया तो जाएगा क्लास में, ऐसे ही हम हरम में ज़ियारत कर कर आते हैं, लेकिन क्या हम वो चीज़ें हासिल कर सकेंगे जिसके अभी हमें पता भी नहीं है वाकई वो क्या चीज़ है जो इनायत होती है मौला की तरफ से, वो वाकई जिन लोगों ने वो अल्फाज में बयान नहीं होती, ये चीज़ें अल्फाजों में बयान नहीं होती। बस पहली चीज़ अगर वाकई वो जो जिस तरह हज की रिवायात में है ना कि वो साहबी ने कहा इतने हुज्जाज हैं, तो आपने कहा इसमें वर्ड इस्तेमाल किया मौला ने, तो इसी तरीके से ज़ायरीन इतने सारे हैं उसमें वाकई सही मानों में ज़ाहिर जिसे इमाम कहें हाँ ये मेरा ज़ब्बार है वो कितने हैं, तो उसके लिए अभी से काम करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। हमें अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से अपने आप को दूर करना होगा। एक दूसरा नुक्ता, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम है, 10 मिनट। दूसरा नुक्ता जो है, जैसे हम किसी से भी कोई फैज़ हासिल करना हो, तो हमारी डायरेक्शन, हमारा रुख उनकी तरफ होना चाहिए। जैसे अभी उस्ताद अभी दर्स दे रहे थे, तो आप सबके चेहरे इधर होंगे तो कुछ हासिल करेंगे ना, अगर कोई जो है ना वो उस तरफ देख रहा हो तो वो क्या हासिल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे दिल कल्ब को, कल्ब इसलिए कहते हैं कि ये मुनकलिब होता रहता है, अपनी डायरेक्शन है जब बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। जब हम उस एनवायरनमेंट में जाते हैं एकदम से, जब हम माह मुबारक रमज़ान में होते हैं फौरन से मानवियात आने लगती है, लेकिन जैसे ही ईद आती है शायद पहली दूसरी तीसरी तक काम तमाम पूरे 30 दिन का। तो इसलिए दूसरा तरीक़ेकार ये बताया गया है, हुब्बे दुनिया, इस दिल से हुब्बे दुनिया को निकालना है, तब हुब्बे इमाम, हुब्बे खुदा, हुब्बे विलायत हासिल होगी। एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। अगर हमारे दिल में ख्वाहिश है, अब आप देखें कभी अपने आप को चेक करें अगर कि हमारे दिल का रुख किस तरफ है, तो आप देखें आपकी पहली तीन दुआएं क्या हैं। खुदा मुझे घर दे दे, अगर कोई स्टूडेंट है तो कहेगा मैं मुझे इम्तिहान में पास कर दें, जो है ना वो मेरा अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी आ जाए, बड़ी है तो उससे बड़ी आ जाए, ये छोटा मोबाइल है उससे बड़ा मोबाइल आ जाए। ये भी खुदा ने कहा मांगो, मुझी से मांगो, लेकिन हमारा हम वो गम क्या है ये देखना होता है। तो हम जिससे जिस जगह मौला से जो चीज़ हासिल करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें को उनके लिए माना नहीं रखती, लेकिन बात ये कि हमारे दिल में होब किसकी है, हमारे दिल में आया वो हम गम है जो इमाम का हम गम था, जिसके लिए करबला बसाई गई, वो हम गम है, वो दर्द है हमारे दिल में, वो है, वो क्या है, वो है दीन का दर्द। आज दीन के साथ क्या हो रहा है, आज दीन के हामी कौन है, आज दीन के मुखालिफ कौन है, दीन के दुश्मन कौन है, इस फ्रंट पे कौन है, उस फ्रंट पे कौन है, हम क्या, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो दूसरी चीज़ है अपने दिल से हुब्बे दुनिया को निकालेंगे तब जाके हमें इमाम की दी हुई ज़्यारत की दी हुई नूरानियत को हम अपने अंदर हिफ्ज कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर हुब्बे दुनिया भी मौजूद रहे और ज़्यारत की वो मानवियत, वो नूरानियत, वो तोहफे जो आइम्मा, जो इमाम अपने ख़ास ज़ुवार को देते हैं, वो भी हम साथ रखें, ये दो जमा नहीं हो सकते। तो ये अभी से इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हम एक आमादगी के साथ इमाम की दर पर हाज़िरी दे सकेंगे, ताकि उनसे वो चीज़ें हासिल कर सकें और उसको उन चीज़ों को हिफ्ज भी रख सकें। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी, और भी चीज़ें इंशाल्लाह फिर अगले सेमिनार्स में बयान करेंगे, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। लिहाजा इस दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल वाकई वो हमें इमाम हुसैन की बारगाह में जैसा देखना चाहता है हमें ऐसा तब्दील कर दे, क्योंकि हमें तो इंसान के वक़्त में, इंसान के बस में कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ वहाँ से, अगर हम गुनाहों से दूर भी होंगे, अगर हम अपने दिल से हुब्बे दुनिया निकालेंगे, ये भी उनका करम और लुत्फ होगा। सिर्फ हमारा दिल से इरादा, कितने खलूस के साथ हम इरादा करते हैं, ये हमारे हाथ में है, बाकी सारा देन वहाँ से होती है। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल हमें इस काबिल बनाए कि हम उनकी बारगाह में, इमाम की बारगाह में हाजिर होने के काबिल हो सकें और अपने जितने भी गुनाह हैं हमारे उनको बख्शवा सकें, और हमारे मरहूमीन के लिए भी जितनी नूरानियत वहाँ से हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर सकें, और जितने भी मुस्तहबात हैं और जितने भी उन ज़्यारतों की कमा हक़ आदाब हैं वो सब के सब हम अंजाम दे सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। एक सलवात पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद।